ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मसनूई ज़हानत AI को एक फैसला कुन ताकत करार दिया जो इस सदी में इंसानियत के लिए कोड रकम कर रही है। उन्होंने पेरिस में AI एक्शन समिट में मसनूई ज़हानत के इनकलाबी असरात को उजागर किया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम से भारत और फ्रांस के दरमियान तजारत काफी फरोग पा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत यूनानी निजाम तिब के तहत तालीम, तहकीक, हिफ्जान सेहत और अद्वियात की तैयारी के मामले में दुनिया की क्यादत कर रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में बताया कि हुकूमत की तवज्जो गांव में खुशहाली लाने पर मरकूज है। ज़राअत, MSME, सरमायाकारी और बरामदात तरक्की के इंजन हैं। कांगो के इतूरी सूबे में मिलिशिया जंगजुओं के हमले में कम से कम 55 अफराद हलाक हो गए हैं और भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी ने 36वां कौमी खिताब हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मसनूई ज़हानत AI के इनकलाबी तब्दीली लाने वाले असरात को उजागर किया और इसे एक फैसला कुन ताकत करार दिया जो इस सदी में इंसानियत के लिए कोड रकम कर रही है। आज पेरिस में फ्रांस के सदी इमैनुअल मैक्रों के हमराह AI एक्शन समिट की मुशतरका सदारत करते हुए वजीर आजम मोदी ने पूरी इंसानियत के लिए AI के फवायद को यकीनी बनाने के लिए आलमी इश्तराक तआवुन की जरूरत पर जोर दिया।
AI is already reshaping our polity, our economy, our security and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. AI is developing at an unprecedented scale and speed.
जनाब मोदी ने AI के लिए आलमी शराकत दारी को मजीद जामे बनाने पर भी जोर दिया ताकि आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों की तरजीहात को पूरा करने और खदशात को दूर करने को यकीनी बनाया सके। AI को अपनाने के अमल में भारत की क्यादत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने मुल्क के डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे के बारे में बात की जिसने हुक्मरानी को जदीद बनाया है और मामूली कीमत पर 1,40,00,000 लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जनाब मोदी ने सभी की शमूलियत पर पूरी तवज्जो मरकूज करते हुए अवाम की फलाह बहबूद के लिए मसनूई ज़हानत तैयार करने के भारत के अज़्म को दोहराया। उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए AI की सलाहियत को उजागर किया।
AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. To do this, we must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must democratize technology and create people-centric applications.
वजीर आजम मोदी ने AI फाउंडेशन और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल AI के क्याम के फैसले की सताइश की और फ्रांसीसी सदर को इन कोशिशों की क्यादत करने के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने जिम्मेदार और सभी की शमूलियत वाले AI गवर्नेंस को आगे बढ़ाने में भारत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। एक अहम ऐलान के तहत वजीर आजम ने कहा कि भारत अगली AI एक्शन समिट की मेजबानी करने के लिए तैयार है। पेरिस में मुनाकिदा AI एक्शन समिट रहनुमाओं के बयान को अपनाने के साथ इख्तिताम पजीर हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में AI एक्शन समिट के मौके पर इस्टोनिया के सदर आतार करीस से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात थी। वजारत खारजा ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने इक्तसादी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सकाफती सियाहत के शोबों और आवाम से आवाम के दरमियान राबते समेत भारत इस्टोनिया ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना बाहमी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर भी बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत गुज़श्ता एक दहाई में 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है जबकि पहले वो 10वें मकाम पर था। उन्होंने ये बात आज सुबह द्वारका के यशोभूमि में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करते हुए कही। जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की शमसी तवानाई तैयार करने की सलाहियत में 32 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत शमसी तवानाई पैदा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि गैर रिवायती ईंधन तवानाई की सलाहियत 3 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत पेरिस मुआहिदे के अहदाफ को हासिल करने वाला पहला G20 मुल्क है। वजीर आजम मोदी ने इस बात को उजागर किया कि भारत न सिर्फ खुद तरक्की कर रहा है बल्कि दुनिया की तरक्की में भी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तवानाई का शोबा इस कामयाबी के हुसूल में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत की बायो ईंधन की सनअत तेजी से तरक्की कर रही है। इथेनॉल की आमदनी के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क फिलहाल 19% इथेनॉल की आमदनी कर रहा है, जिससे गैर मुल्की जर मुबादला की बचत करने, किसानों के लिए काफी मुनाफा हासिल करने और कार्बन के अखराज में वाज़े कमी करने में मदद मिली है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि मेक इन इंडिया पहल के तहत मुल्क ने मकामी सप्लाई सिलसिले और मकामी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम किए जाने पर तवज्जो मरकूज की है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज कहा है कि बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम से भारत और फ्रांस के दरमियान तिजारत फरोग पा रही है। आज शाम पेरिस में 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम के इफ्तिताह इजलास से खिताब में डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को उजागर किया कि भारत और फ्रांस आजादाना नजरियात की रिवायत वाले दो ममालिक हैं।
Our ties are trust-driven and value-based. They have developed a very high level of comfort. That, in turn, allows us to contemplate a very broad range of domains for cooperation. Quality of our strategic partnership encourages the ambitious nature of our agenda. So the more we do with each other, the more we strengthen our positions and, equally important, help stabilize the global economy in volatile and uncertain terms.
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और फ्रांस एक खरीदार और फरोख्त करने वाले मरहले से मजीद मुस्तहकम इश्तराक की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेक इन इंडिया ने नए इम्कानात पैदा किए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत आज तालीम, तहकीक, हिफ्जान सेहत और यूनानी निजाम तिब के तहत अद्वियात की तैयारी के मामले में दुनिया भर में एक सरकर्दा मकाम रखता है। आज शाम नई दिल्ली में यूनानी के दिन के मौके पर दो रोजा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि आज यूनानी निजाम तिब यूनान और वस्ती एशिया के मुल्कों में उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता जितना भारत में किया जाता है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि यूनानी तिब्बी निजाम से वाबस्ता मुहक्किकीन और डॉक्टर्स जदीद तौर तरीकों और टेक्नोलॉजी के मुफीद पहलुओं को अपना रहे हैं।
हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को समुचित सम्मान देते हुए उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुसार यूनानी सहित आयुष चिकित्सा प्रणालियों को मुख्य धारा में लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के दिशा निर्देश में अनेक यूनानी चिकित्सा के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन और शोध कार्य चल रहा है। यूनानी मेडिकल कॉलेज में MD और PhD प्रोग्राम भी शुरू कर रहे।
सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क ने सेहत के हवाले से एक जामे नुक्ते नजर अपनाया है और मुनासिब एहतराम देकर मुख्तलिफ तिब्बी निजाम को बाइख्तियार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सेहत पॉलिसी 2017 के तहत यूनानी समेत आयुष तिब्बी निजाम को मरकजी धारे में लाने पर खसूसी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय निजाम अदविया के लिए कौमी कमीशन की रहनुमाई में बहुत से यूनानी तिब्बी तालीमी इदारों में मुतालियात और तहकीक का अमल जारी है। इन इदारों में MD और PhD प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। हर साल 11 फरवरी को मशहूर यूनानी मुआलिज, माहिर तालीम और मुजाहिद आज़ादी हकीम अजमल खां के यौम पैदाइश के मौके पर यूनानी का दिन मनाया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत ज़राअत, MSMEs, सरमायाकारी और बरामदात को तरक्की के इंजन बनाकर गांव में खुशहाली लाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट 2025-26 में मुल्क के 100 सबसे ज्यादा पसमानदा जिलों में ज़रई पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज शाम लोकसभा में मरकजी बजट पर बहस का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने यह बात कही। انہوں نے کہا کہ اہم اخراجات 4.3% ہے اور مالی خسارہ جی ڈی پی کا 4.4% ہے، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ حکومت سبھی وسائل کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی بجٹ 2025-26 مالی ترجیحات کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقیاتی ضروریات میں توازن پیدا کرتا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت مسلسل سب سے تیز ترقی کرنے والا ملک رہے گا۔
The Union budget for 25-26 has sought to address these immediate challenges facing the domestic economy in the global context. It also rolls out futuristic path for transforming India into Viksit Bharat. Our main goals in this budget are to accelerate goals, our growth, secure inclusive development, invigorate private sector investments and uplift household sentiments.
ٹی ایم سی کے ارکان پارلیمنٹ کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہ مغربی بنگال کے مفادات کا مرکزی بجٹ میں خیال نہیں رکھا گیا ہے، وزیر خزانہ نے ریاست کے لیے بجٹ میں مختلف اقدامات کا ذکر کیا۔ اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے الزام لگایا کہ فلاحی اسکیموں کے فائدے زمینی سطح پر لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ کانگریس کے سیلنگ سانگما نے مرکزی بجٹ کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ زراعت، تعلیم اور شہری ترقیات سمیت ملک کے اہم مسائل کا ازالہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بحث میں شامل ہوتے ہوئے بی جے پی کی ہیما مالنی نے کہا کہ ملک میں خواتین اور کسانوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تیز رفتار ترقی ہو رہی ہے۔ شیو سینا کے شری کانت شندے نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مرکزی بجٹ میں سماج کے ہر طبقے کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے۔ لوک سبھا میں بحث اب جمعرات کو جاری رہے گی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کل سنت روی داس جینتی کی چھٹی کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کو سرحدی گریڈ کو مضبوط کر کے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے دراندازی کو بالکل ختم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جموں کشمیر کی سیکیورٹی کی صورتحال سے متعلق نئی دلی میں حالیہ اعلی سطحی میٹنگوں میں وزیر موصوف نے سیکیورٹی سے متعلق سبھی ایجنسیوں کو چوکس رہنے کی بھی ہدایت دی اور ان سے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سرگرم طور پر اپنا کام جاری رکھیں۔ جناب شاہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جموں کشمیر میں زیرو ٹیرر پلان کے لیے پختہ اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کی مالیانت پر نظر رکھنا، منشیات اور دہشت گردی کے معاملات پر شکنجہ کسنا اور جموں کشمیر میں دہشت گردی کے مکمل ایکو نظام کو تہس نہس کرنا مودی حکومت کی ترجیحات ہیں۔ جموں کشمیر میں آج جموں کے اخنور سیکٹر کے ایک علاقے کے قریب مشتبہ آئی ڈی دھماکے میں فوج کے دو اہلکار مارے گئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ کمزور رہ کر بین الاقوامی نظم و نسق اور امن کو یقینی نہیں بنایا سکتا۔ جناب سنگھ آج بنگلورو میں ایرو انڈیا شو کے موقع پر وزیر دفاع ایک کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ کانگو کے اتوری صوبے میں بے گھر افراد کے کیمپ اور گاؤں پر ملیشیا جنگجوؤں کے ایک حملے میں کم از کم 55 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ میڈیا خبروں کے مطابق کوآپریٹو فار دا ڈیولپمنٹ آف کانگو ملیشیا کے مسلح افراد نے کل رات صوبے میں دوجائبا میں گاؤں پر حملہ کیا تھا، جہاں بے گھر افراد کا ایک کیمپ بھی ہے۔ بھارت کے سب سے زیادہ کیوسک مکمل کرنے والے پنکج اڈوانی نے مدھیہ پردیش کے یشونت کلب میں بھارتی سنوکر چیمپئن شپ میں اپنا 36واں قومی خطاب اور مردوں کا 10واں سنوکر ٹائٹل جیت لیا ہے۔ انہوں نے فائنل میں برجیش دمانی پر 5-1 سے جیت حاصل کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مصنوعی ذہانت اے آئی کو ایک فیصلہ کن طاقت قرار دیا جو اس صدی میں انسانیت کے لیے کوڈ رقم کر رہی ہے۔ انہوں نے پیرس میں اے آئی ایکشن سمٹ میں مصنوعی ذہانت کے انقلابی اثرات کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ باہمی تعلقات کے استحکام سے بھارت اور فرانس کے درمیان تجارت کافی فروغ پا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت یونانی نظام طب کے تحت تعلیم، تحقیق، حفظان صحت اور ادویات کی تیاری کے معاملے میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ نرما سیتارمن نے لوک سبھا میں بتایا کہ حکومت کی توجہ گاؤں میں خوشحالی لانے پر مرکوز ہے۔ کانگو کے توری صوبے میں ملیشیا جنگجوؤں کے حملے میں کم سے کم 55 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔